بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज गुरुवार है, दई की 14, रबी उसानी की 21, जमादी सानी की 21 और जनवरी की 4 तारीख। क्षमा कीजिएगा श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करेगा। हमारे पते नोट कर लें, हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi और फेसबुक पर हमारे पेज का पता है parstoday.hindi। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा ईरान शताब्दी के झरोखे में। श्रोताओं, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि शहीद सुलेमानी के मजार के श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों को अपराधी सहन नहीं कर पाए। राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवादी घटनाएं ईरानी राष्ट्र की एकता में विघ्न नहीं डाल पाएगी। अमरीकी हमले में 2 व्यक्ति शहीद हो गए। सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि अल आरूरी की हत्या बिना जवाब के नहीं रहेगी। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि शहीद सुलेमानी के रास्ते पर चलने वाले अपराधियों के अपराधों को सहन नहीं करेंगे। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने शहीद कासिम सुलेमानी की मजार पर शहीद होने वालों के संदर्भ में कहा, अपराधियों को जान लेना चाहिए कि शहीद सुलेमानी के मार्ग पर चलने वाले कभी भी उनकी निजता और अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने संदेश में आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने कहा है कि ये अपराधी शहीद सुलेमानी के मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों को सही नहीं कर पाए। सर्वोच्च नेता ने कहा है कि निर्दोषों के खून से सने हाथों और वे भ्रष्ट एवं दुष्ट दिमाग जिन्होंने इस गलती को अंजाम दिया है, उनको पता होना चाहिए कि इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी। सर्वोच्च नेता ने कहा कि इस आतंकवादी घटना में शहीद होने वालों को श्रद्धांजलि पेश करते हुए घायलों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। ज्ञात रहे कि बुधवार की शाम 3 जनवरी 2024 को शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के संबंध में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ईरान के किरमान नगर में शहीद सुलेमानी के मजार के निकट 2 आतंकवादी विस्फोट हुए, जिसमें 84 श्रद्धालु शहीद और 211 घायल हो गए।
राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि आतंकवादी घटना ईरानी राष्ट्र की एकता और सुरक्षा में बाधा नहीं डाल पाएगी। सैयद इब्राहिम रईसी ने तुर्की के अपने समकक्ष के साथ टेलीफोनी वार्ता में कहा कि ईरानी राष्ट्र के शत्रु सोचते हैं कि आतंकवाद के माध्यम से वे अपने अवैध हितों को प्राप्त कर लेंगे, किंतु ईरानी राष्ट्र सिद्ध कर चुका है कि इस प्रकार के अपराध उसकी एकता और शांति को भंग नहीं कर पाएंगे। दक्षिणी ईरान के किरमान नगर में शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी के अवसर पर आयोजित शोक सभा में बुधवार की शाम दो आतंकवादी विस्फोट हुए। इस आतंकवादी घटना में 103 लोग शहीद और 211 घायल हो गए।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अपने ईरानी समकक्ष और ईरानी राष्ट्र के प्रति सहानुभूति जताई है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने एक संदेश भेजकर कल किरमान प्रांत में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर होने वाले आतंकवादी भीषण विस्फोट की भर्त्सना की और ईरानी राष्ट्रपति सरकार और ईरानी राष्ट्र के प्रति सहानुभूति जताई है। प्राप्त समाचारों के अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अपने संदेश में किरमान प्रांत में होने वाले आतंकवादी विस्फोट की निंदा की और कहा कि संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग ईरानी राष्ट्र के साथ हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस आतंकवादी विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों से सहानुभूति जताता है।
किरमान में शहीद होने वालों का अंतिम संस्कार कल शुक्रवार को किया जाएगा। बुधवार 3 जनवरी 2024 को ईरान के किरमान नगर के गुलजार ए शहदा नामक कब्रिस्तान के निकट शाम के समय थोड़े अंतराल से दो आतंकी विस्फोट हुए। ईरान की सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक शोक की घोषणा की है। किरमान प्रांत के गवर्नर मोहम्मद मेदी फदाकार ने तस्नीम से बात करते हुए कहा कि गुलजार ए शहदा की घटना के प्रभावितों की संख्या अब स्पष्ट हो गई है। मोहम्मद फदाकार के अनुसार घायलों के किरमान के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की स्थिति दयनीय बताई गई है। इसी बीच ईरान के गृह मंत्री अहमद वहीदी ने गुरुवार को सुबह किरमान के शहीद बाहुनर अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के बाद कहा कि निर्दयी आतंकवादियों, उनके तत्वों और उनके समर्थकों को ईरानी राष्ट्र के क्रोध का सामना करना पड़ेगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा है कि किरमान की आतंकी घटना के संदर्भ में इस्लामी गणतंत्र ईरान इस घटना में लिप्त लोगों और उनके सहयोगियों की जवाबदेही को सुनिश्चित कराने के लिए सारे ही उपलब्ध तंत्रों का प्रयोग करने के प्रति कटिबद्ध है। अमीर सईद इरवानी ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और सुरक्षा परिषद के वर्तमान प्रमुख फ्रांस के राजदूत को भेजे गए पत्र में लिखा है कि बहुत ही दुखी मन से आज 3 जनवरी 2024 को किरमान में होने वाले आतंकवादी घटना की सूचना में मैं राष्ट्रसंघ के महासचिव और सुरक्षा परिषद के सदस्यों को देना चाहता हूं।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा है कि शेख अल आरूरी की हत्या एक खतरनाक अपराध है और वो निरुत्तर नहीं रहेगी और रणक्षेत्र इस बात को सिद्ध कर देगा। सैयद हसन नसरुल्ला ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मोहंदेस की शहादत की चौथी बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि शेख साले अल आरूरी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी उम्र जहारत और प्रतिरोध के मार्ग में बिता दी और अंत में वे शहीद भी हो गए। सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी वो हस्ती थे जिन्होंने प्रतिरोधों के माध्यम से मध्य समन्वय उत्पन्न किया और वो चाहते थे कि सहयोग अनुभवों के आदान प्रदान, समरसता और क्षेत्र में भविष्य के बारे में समान दृष्टिकोण मौजूद रहे।
किरमान के गुलजारे शहदा की आतंकवादी घटना के विश्व स्तर पर निंदा की जा रही है। गुलजार शोदा की आतंकी घटना के कारण ईरान में गुरुवार को सार्वजनिक शोक मनाया जा रहा है। बुधवार की शाम किरमान नगर में शहीद कासिम सुलेमानी के मजार के निकट होने वाली आतंकवादी घटना पर विश्व के विभिन्न देशों के नेताओं ने शोक संदेश भेजकर सहानुभूति प्रकट की है।
अमरीकी सैनिकों ने बगदाद के पूर्व में हमला किया जिसमें इराक के स्वयंसेवी बल के कम से कम 2 जवान शहीद हो गए। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार इराक के अन्नो जबा आंदोलन के संचार माध्यमों ने खबर दी है कि अमरीकी अतिग्रहणकारियों ने बगदाद के पूर्व में स्थित हश्दुशाबी से संबंधित एक ठिकाने पर हमला किया जिसमें कम से कम 2 जवान शहीद और कई घायल हो गए। प्राप्त समाचारों के अनुसार इराकी पुलिस केंद्र के निकट हश्दुशाबी के लॉजिस्टिक समर्थन केंद्र पर अमरीका का आतंकी हमला हुआ है। इराकी सूत्रों ने ऐलान किया है कि इस अमरीकी हमले में हश्दुशाबी के एक कमांडर अबू तकवी असईदी और एक दूसरा कमांडर शहीद हुआ है और ये इराकी संप्रभुता का खुला उल्लंघन है।
और अंत में यह समाचार कि फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के खिलाफ इजरायली सरकार के पार्श्विक हमले 90 दिनों से जारी हैं। प्राप्त समाचारों के अनुसार गजा पट्टी पर इजरायली सैनिकों ने भीषण बमबारी की जिसमें 40 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो गए। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार अवैध इजरायली सरकार के युद्धक विमान गजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों पर भीषण बमबारी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 22,313 व्यक्ति शहीद हो चुके हैं। गत 24 घंटों के दौरान इजरायली सरकार के पारसिक हमलों में 128 फिलिस्तीनी शहीद और 261 घायल हो गए। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे ईरान के किरमान शहर में होने वाले आतंकी हमले की। ज़ायनी शासन गजा पट्टी में नस्ली सफाई की कार्रवाई करने की कोशिश में है, जिस पर विश्व स्तर पर चिंता पाई जाती है। ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। भारत में दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार देखने में आ रही है। यह विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं किरमान में होने वाले आतंकी हमले से। ईरान के किरमान नगर में बुधवार को आतंकी हमले हुए, जिसमें कुद्स फोर्स के महान कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे दर्जनों श्रद्धालु शहीद हो गए। जायजा पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
ईरान के दुश्मनों ने पुनः आतंकवादी कार्रवाई करके सैकड़ों निर्दोष ईरानी नागरिकों को शहीद और घायल कर दिया। बुधवार को किरमान में IRGC की कुद्स ब्रिगेड के पूर्व कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी मनाई जा रही थी। किरमान के गुलजार शोहदा नामक कब्रिस्तान के निकट शाम के समय थोड़े ही अंतराल से दो आतंकी विस्फोट हुए। इन आतंकी धमाकों में 103 लोग शहीद और 211 अन्य घायल हो गए। इस संबंध में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अलुज़्मा सैयद अली खामिनेई ने कहा है कि अपराधियों को ये जान लेना चाहिए कि शहीद सुलेमानी का रास्ता तय करने वाले उनके अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रपति रईसी ने भी किरमान के गुलजारे शोदा की आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इसको अंजाम देने वालों को ढूंढ निकाला जाए। दुनिया के देशों में इस्लामी गणतंत्र ईरान एक ऐसा देश है जो आरंभ से आतंकवाद की भेंट चढ़ता आया है। आतंकवादी कार्रवाइयों में अब तक ईरान के 17,000 से अधिक नागरिक शहीद हो चुके हैं, जिनमें आम लोग और अधिकारी सभी शामिल हैं। पश्चिमी एशिया में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करना, उनकी आर्थिक एवं सैन्य सहायता करना और उनके लिए गोपनीय सूचनाएं उपलब्ध करवाना दुश्मनों का काम रहा है। इसके संदर्भ में कई उदाहरण पेश किए जा सकते हैं, जैसे जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत में रास्क में सुरक्षा कर्मियों के मुख्यालय पर हमला, पिछले वर्ष के आरंभ में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पर हमला, संसद और स्वर्गीय इमाम खुमैनी के मजार पर आक्रमण और इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के भीतर विस्फोट तथा परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं आदि। इस प्रकार की आतंकवादी कार्रवाइयों से शत्रुओं का लक्ष्य ईरान के भीतर अशांति पैदा करना है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ईरान के विरुद्ध इतनी अधिक आतंकवादी कार्रवाइयों के बावजूद विश्व समुदाय ने न केवल इनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाली सरकारों ने भी इन कार्रवाइयों में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया है। उदाहरण स्वरूप, केरमान के गुलजारे शोहदा की आतंकवादी घटना के संदर्भ में अमरीका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरान में विस्फोटों में वाशिंगटन की कोई भूमिका नहीं है और इस बात का कोई प्रमाण भी मौजूद नहीं है कि हम ये मान लें कि इसमें इसराइल का हाथ रहा है। हालांकि बुधवार की केरमान के गुलजारे शोहदा की आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी किसी ने स्वीकार नहीं की है, किंतु कुछ दिन पहले सीरिया में ईरान के बहुत अनुभवी सैन्य सलाहकार सैयद रजी मूसवी की हत्या और उसके बाद ही लेबनान में हमास के नेता साले अल आरूरी की हत्या के कारण बहुत सी उंगलियां अवैध ज़ायोनी शासन की ओर उठने लगी हैं। इसी बीच केरमान की आतंकवादी घटना के संदर्भ में ईरान के गृह मंत्री अहमद वहीदी ने कहा है कि इसका जवाब पूरी शक्ति के साथ बहुत ही कम समय के भीतर दिया जाएगा।
ज़ायोनी शासन गज़ा पट्टी में नस्लीय सफाई की कार्यवाही करने की कोशिश कर रहा है और इस बारे में विश्व स्तर पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जायजा सुनिए अख्तर अब्बास से।
संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रिपोर्टर ने बुधवार को कहा है कि गजा की जनता का जबरन स्थानांतरण और विस्थापन नरसंहार है और उन्होंने अन्य देशों को ऐसी कार्रवाई में भाग न लेने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रिपोर्टर बालाकृष्णन राज गोपाल ने एक्स सोशल नेटवर्क पर लिखा कि गजा की आबादी का जबरन स्थानांतरण विशेष रूप से बच्चों की बड़ी संख्या को देखते हुए एक प्रकार का नरसंहार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कांगो के अधिकारी या अन्य देश किसी भी जनसंख्या हस्तांतरण के लिए सहमत तो होते हैं तो वे इस नरसंहार में भागीदार होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का रुख और गजावासियों के जबरन प्रवास के बारे में चेतावनियों पर आधारित कुछ रिपोर्टें ऐसी हालत में सामने आई हैं कि जब इसराइली अधिकारियों की ओर से गजावासियों को संभावित कबूल करने के लिए अफ्रीकी देश कांगो और कई अन्य देशों के साथ गुप्त बातचीत का मुद्दा सामने आया है। 7 अक्टूबर को तूफान अलक्सा ऑपरेशन के बाद ज़ायोनी शासन ने गजा पट्टी पर भूतपूर्व हवाई और जमीनी हमले किए जिसके कारण गजा की मजलूम जनता की बड़े पैमाने पर हत्या हुई और फिलिस्तीनी बुनियादी ढांचे और घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इन 3 महीनों में गजा पट्टी में जो 22,000 से अधिक लोग शहीद हुए उनमें 8,000 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा ज़ायोनी शासन के आक्रमण की वजह से गजा की जनता विस्थापित हुई। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की राहत और कार्य एजेंसी UNRWA ने पहले घोषणा की थी कि 17 लाख फिलिस्तीनी गजा पट्टी के उत्तर और केंद्र में विस्थापित हुए हैं और इस क्षेत्र के दक्षिण में घरों और शिविरों में रह रहे हैं जो स्वयं ही घनी आबादी वाला इलाका है। ज़ायोनी शासन ने वादा किया था कि अपने वर्तमान सैन्य अभियान में वो गजा पट्टी में हमास और अन्य फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ता गुटों की समस्या का समाधान करेगा और साथ ही वो गजा से तथा कथित खतरों की समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा। अब गजा युद्ध को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। गजा के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के बावजूद इसराइल को प्रतिरोधकर्ता गुटों को नष्ट करने में कोई सफलता नहीं मिली है और फिलिस्तीनी जियाले ज़ायोनी सैनिकों और उनके बख्तरबंद वाहनों पर घातक प्रहार करने में कामयाब हैं। गजा मुद्दे के तथाकथित अंतिम समाधान के संदर्भ में ज़ायोनी शासन के अधिकारी विशेष रूप से प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अपने मंत्रिमंडल के चरमपंथी मंत्रियों यानी आंतरिक सुरक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के साथ गजा से फिलिस्तीनियों का निष्कासन चाहते हैं। ज़ायोनी प्रधानमंत्री उनके कट्टरपंथी मंत्रिमंडल को गजा पर सैन्य चढ़ाई का कोई फायदा हासिल नहीं हो सका है और ये इसराइल की सबसे बड़ी नाकामी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश।
कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत के दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा लगातार चर्चा में है और इस पर भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति में कथित घोटाले के मुद्दे को लेकर तीसरा सम्मन ठुकराए जाने के बाद कभी भी गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को चौथा सम्मन जारी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता शाह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सम्मन भाजपा मुख्यालय से निकलेगा।
आप देखिए, सम्मन जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि सम्मन जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हरेक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बात कार्यवाही करेगा।
बता दें कि कल रात केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और आज सवेरे पार्टी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। अपनी गिरफ्तारी की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया था और उनके सारे सवालों के जवाब भी दिए थे, लेकिन अब ये लोग लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य कोई पूछताछ करना नहीं है, बल्कि पूछताछ के बहाने बुलाकर मुझे गिरफ्तार करना है ताकि मैं चुनाव में प्रचार न कर सकूं। सीएम ने कहा कि शराब घोटाले के नाम पर सारी एजेंसियां कई छापे मार चुकी हैं, लेकिन कहीं से एक पैसा भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, यदि होता तो पैसा भी मिलता। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं को जेल में रखा है, लेकिन उनके अनुसार किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी है और भाजपा झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहती है।
बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है।
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है और जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है। प्रशासनिक अधिकारों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव चला आ रहा है और केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाती रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती है। शमशाद कासमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम भारत में विपक्ष को संगठित करने की कोशिश पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। भारत में जहां विपक्ष में बिखराव बढ़ता ही जा रहा है, वहीं सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस विपक्ष को सरकार के विरुद्ध एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश के अंतर्गत कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे, जो 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी। ये यात्रा 20 मार्च को खत्म होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने पिछले साल कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो इस साल की शुरुआत में कश्मीर में खत्म हुई थी। इस बार यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। 26 दिसंबर को मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करेगी। भारत की प्रसिद्ध महिला टीकाकार मृदुला मुखर्जी का कहना है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा का समय बिल्कुल ही सही है।
हाँ, मेरे ख्याल से तो सही है। मुझे लगता है कि थोड़ी और जल्दी भी हो सकती थी, पर हमें मालूम है कि अभी वही चुनाव का मुद्दा बीच में हमेशा आ जाता है, क्योंकि अब हमारा जो सिस्टम बन गया है, अभी पिछले कुछ महीने तो कई स्टेट्स के चुनाव में निकल गए, तो उस पीरियड में भी ये नहीं हो सकती थी। तो अब ये पहला मौका मिला है, चुनाव हो गए, रिजल्ट निकला है, नया सिचुएशन को एनालाइज किया गया है और उसके एनालिसिस के नतीजे पे ही मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है। एक चीज पे मैं कमेंट करना चाहती हूँ कि इस बारी जो एक नई चीज इसमें है कि ये कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमिटी के, विच इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कांग्रेस पार्टी लाइक द कैबिनेट, उनकी तरफ से ये फैसला आया है और उन्होंने राहुल गांधी को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप ये यात्रा पे जाइए। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है जो हमें एनालाइज करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी उसके पीछे थे, पर इस तरह जैसे कि ओनरशिप ली है इस यात्रा की और उनकी तरफ से सारे एक कंसेंसस से ये रिक्वेस्ट आया है कि आप इस यात्रा पे जाइए, इसका बहुत बड़ी अहमियत है। जो कनेक्शन है यात्रा और पार्टी के बीच में, जो पिछली बारी जब भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी तो ये बार बार सवाल उठाया जाता था कि इस यात्रा का क्या ये राहुल गांधी का एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव अच्छा होगा पर कांग्रेस पार्टी के लिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है। मुझे लगता है अब ये मामला तो कम से कम साफ हो जाना चाहिए कि इस पे कोई दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो पहली जो यात्रा हुई है उसका इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस को भी रिकॉग्नाइज किया है।
बताया गया है कि इस बार की यात्रा पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा की तरह पैदल नहीं निकाली जाएगी। इस बार रुक रुक कर पैदल चलने के बाद बस यात्रा भी शामिल होगी। समृद्ध भारत फाउंडेशन के डायरेक्टर पुष्पराज देशपांडे का कहना है कि राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस को दोबारा मैदान में लाने के लिए है, क्योंकि जहां भाजपा राम मंदिर की बात कर रही है वहीं कांग्रेस न्याय की बात कर रही है।
पहले तो दोनों भारत जोड़ो यात्राओं को आप संरचनात्मक रूप से देखिए, स्ट्रक्चरल रूप से देखिए, उन्हें कंटेक्चुअलाइज करिए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय सारी सरकारी संस्थान, प्रशासन से लेकर जुडिशरी, पुलिस एजेंसी, सबका दुरुपयोग किया जा रहा था विपक्ष के आपास को कुचलने के लिए। हाल ही में आज कुछ ही समय पहले 144 सांसदों को निलंबित किया सिर्फ जवाबदेही से बचने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी आपकी आवाजों को, आपकी आकांक्षाओं को, आपकी जरूरतों को कुचला जा रहा है। अब जब हम क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं या बेरोजगारी की बात छेड़ते हैं या पारिवारिक कर्ज की बात करते हैं या लाखों की तादाद में लोग जो देश छोड़ के जा रहे हैं विदेश बसने के लिए, या चीन ने जो हमारी भारत माता पे कब्जा कर रखा है, किसी भी चीज को अगर हम लोग छेड़ते हैं तो भाजपा सरकार आपको गुमराह करने के लिए किसी और बात को उछालती है, आपको उत्तेजित करके ध्यान भटका देती है। इनके ये पिछले 9 सालों में से रियलिटी शो की एक बिग बॉस टाइप का एक उनका एक रणनीति रही है। इससे जनहित और देश हित की बात कभी ही हो नहीं सकती है, ना संसद में, ना मीडिया में, ना देश के किसी कोने में। ये बिल्कुल ही न्याय विरुद्ध और अप्रजातंत्रवादी है, अनडेमोक्रेटिक है। ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज करनी ही होती है जिससे लोगों को झटका मिले और वो प्रेरित हो, तभी लोग और देश एक साथ मिलकर नाइंसाफी के लिए नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा पाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा मास मोबिलाइजेशन का ये एक ऐसा एक यंत्र था, एक मैग्नेट की तरह वो पूरी देश में चलता रहा, जिससे जितने भी प्रगतिशील लोग थे उससे जुड़ पाए, कांग्रेस से जुड़ पाए और फिर इंडिया दल से जुड़ पाए। अब वही प्रयोग पूर्व से पश्चिम तक लागू करने की जरूरत है, ये देश हित में बेहद जरूरी है।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स सोशल नेटवर्क पोस्ट में बताया कि 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि भारत में कोई भी यात्रा नाकाम नहीं हुई है, चाहे वो राजनीतिक यात्रा हो या सामाजिक यात्रा।
कोई भी यात्रा इस देश में कभी असफल नहीं हुई, ये तो मान लीजिए राजनीतिक यात्रा है, सामाजिक यात्रा है, धार्मिक यात्राएं भी बड़ी असफल हुई, वो चाहे चंद्रशेखर जी की राजनीतिक यात्रा रही हो, आडवाणी जी की राजनीतिक यात्रा रही हो, या जितने भी राजनेताओं ने इस देश में यात्रा की, उनके परिणाम सकारात्मक ही हुए हैं उन दलों के लिए। राहुल जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो सफर तय किया, उसके बाद जो ये दूसरा भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी को। और जब वो यात्रा शुरू की थी तब इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं थी, तो मैं ये महसूस करता हूं कि जिस क्षेत्रों से राहुल गांधी जी गुजरेंगे उन क्षेत्रों में इंडिया अलायंस के घटक दलों का एक बड़ा राजनीतिक आपको वैक्यूम देखने को मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राहुल जी और इंडिया अलायंस के लोग जो भी दल हैं जिन जिन स्टेटों में, उनसे अच्छा सा समन्वय बना के ये प्रयत्न करेंगे कि उस यात्रा को कितना और सक्सेसफुली किया जा सकता है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ये महसूस करता हूं कि ये भारत न्याय यात्रा के साथ साथ 2024 का जो चुनाव है और इस सरकार के द्वारा जो देशवासियों पर अन्याय है, जिसका मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा, ये कोई कुछ भी कह ले कि नरेंद्र मोदी की यूएसपी ये है, वो है, एक्स है, वाई है, जेड है, मनोज यादव के हिसाब से नरेंद्र मोदी की जितनी भी राजनीतिक कारगुजारियां हैं उनका ट्रायल नहीं होता। जिस दिन ट्रायल हो जाएगा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रदेश की सरकारें भड़ाम से वैसे गिर जाएंगी जैसे कि पानी का बुलबुला उठता है और फूट जाता है। सिर्फ मीडिया ट्रायल की जरूरत है। तो निश्चित तौर पे मैं सकारात्मक हूं कि इस बात को सोच रहा हूं कि ये दूसरी यात्रा, इसमें निश्चय ही मौजूदा सरकार के द्वारा जो देशवासियों के साथ अन्याय हो रहा है उसका एक मीडिया ट्रायल होगा, यानी कि कनेक्टिविटी होगी उन नेताओं की जनता के बीच, मौजूदा सरकार किस तरीके से अन्याय कर रही है, किस तरीके से वो ये चाहती है कि इस देश में जो जनता के मुद्दे हैं उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए।
जहां भारत में विपक्ष लगभग खत्म ही नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा और आरएसएस के विरुद्ध मोर्चा संभाले हुए है। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर आरएसएस के गढ़ नागपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने जमकर आरएसएस पर हमला किया। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस के सम्मेलन के आयोजन का ब्यौरा देते हुए कहा,
नागपुर एक क्रांतिकारों की भूमि है। इसी भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों को अपने विचारधारा में लाया और उनको सभी को एक सामाजिक न्याय दिलाया। महात्मा गांधी जी भी वर्धा और यहाँ पर कम से कम 2600 दिन यहाँ पर उन्होंने गुजारा है। करीब 7 साल उन्होंने मेहनत की देश को आजादी दिलाने के लिए। उनका काम यहाँ बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आकर उनका सलाह लेते थे और देश को आजादी दिलाने के लिए क्या करना, इस विचारधारा का यहाँ पर बात होती थी। लेकिन भाइयों, यहाँ दो है, एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। इसीलिए आप सोचना चाहिए, आप बड़ी जवाबदारी है। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक ये जो समानता का एक झंडा है ये आप नहीं फहरा सकते।
जहां भाजपा और आरएसएस के खिलाफ जबान खोलना आत्महत्या के समान समझा जा रहा है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस के गढ़ में आरएसएस की ही जमकर आलोचना की।
ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में है तब बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए, कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आजादी से पहले अगर आप इस देश में आते, 500-600 राजा थे, अंग्रेज थे, राजाओं का गन सलूट होता था, किसी को 19 तोपों का सलूट होता था, किसी को 21 तोपों का सलूट होता था। अगर हिंदुस्तान की जनता को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। गरीब व्यक्ति की जमीन अगर राजा को अच्छी लगी, एक सेकंड में उसको ले जा सकता था। ये सारे के सारे अधिकार जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे, आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था।
नागपुर में पहुंचकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस को चुनौती देना एक सामान्य घटना नहीं है। इतनी हार मिलने के बाद एक राजनीतिक दल आरएसएस से लड़ने का ऐलान कर रहा है। इस तरह की राजनीति आपने पिछले 10 वर्षों में न तो देखी होगी और न ही सुनी होगी। अब समय बताएगा कांग्रेस और विपक्षी दल किस तरह से आरएसएस और भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात, और अब सभा का अंतिम कार्यक्रम पेश है ईरान शताब्दी के झरोखे में।
ईरान शताब्दी के झरोखे में
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान शताब्दी के झरोके में की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास भी जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें।
दोस्तों, वर्ष 1920 में होने वाले तख्ता पलट और उसके बाद रजा खान का सत्ता तक पहुंचना इसे ईरानी समाज के ऐतिहासिक संघर्ष में एक नए चरण की शुरुआत माना जाता है। इस दौरान होने वाली घटनाओं और की जाने वाली कार्रवाइयों की वजह से कई तरह से बदलाव हुए। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अचानक हुए परिवर्तनों को कलाकारों, लेखकों और कवियों के कड़े विरोध और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वहीं इन विरोध और आलोचनाओं को सरकार ने आधार बनाकर और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। साथ ही व्यापक स्तर पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। पहली ईरानी बोलती फिल्म का नाम दुख्तरे लुर है, जो वर्ष 1933 में अर्धशीर ईरानी द्वारा निर्देशित की गई थी। ये फिल्म एक ईरानी जोड़े की कहानी है जो काजार युग के असुरक्षित ईरान से पलायन करके भारत जाकर बस जाते हैं। फिल्म के अंत में ये जोड़ा ईरान लौट आता है। उनके ईरान लौटने के कारण फिल्म के अंतिम रजा शाह के दौर में देश में स्थापित हुई सुरक्षा को करार दिया गया है।
यह फिल्म शायद पहलवी सरकार के प्रचार और समर्थन में प्रकाशित और प्रसारित होने वाली पहली फिल्म थी जिसे सिनेमा स्क्रीन पर दिखाया गया था। फिल्म के बीच बीच में रजा खान की छवि को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सरकार के दबाव के कारण इससे रजा शाह के नाम और छवि को फिल्म में शामिल किया गया था और क्रेडिट में फिल्म के दो नामों का उल्लेख किया गया था, दुख्तरे लुर या कल का ईरान और आज का ईरान। ईरान में सिनेमा का प्रवेश ईरान और ईरानियों के नए युग या आधुनिकता में प्रवेश के साथ ही हुआ है और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सिनेमा ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। यह कला उद्योग अन्य आधुनिक घटनाओं की तरह आयातित था और इसको भी बिना सोचे समझे और बिना किसी पहले की योजना और उद्देश्य से सामाजिक क्षेत्रों में फैला दिया गया था। इसका मकसद भी सरकार की मनमानी योजनाओं और विचारों को जनता के मनोरंजन के नाम पर एक उपकरण के रूप में उन पर थोपना था।
दोस्तों, ईरान में सिनेमा का जन्म समाज में गंभीर परिवर्तनों की शुरुआत के साथ हुआ। रेलवे, ऑटोमोबाइल, बिजली, टेलीफोन और अंततः सिनेमेटोग्राफी का आगमन ईरान में आधुनिकीकरण की शुरुआत के पहले संकेतों में से एक था। लेकिन ईरानी सिनेमा का इतिहास भ्रमित और हताश करने वाला था। इस तरह के कई मामलों में पहलवी युग के दौरान सिनेमा का वर्णन करने के लिए असफल सिनेमा, योजना के बिना सिनेमा, भटका हुआ, बिना तैयारी के, गलतियों से भरा हुआ और सिनेमा के पतन जैसी परिभाषाओं का उपयोग उस दौर के सिनेमा के लिए किया जाता है। हालांकि शुरुआत से ही सिनेमा सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय था, लेकिन ईरान में सिनेमा के विस्तार और रजा शाह की शाही सत्तावादी नींव के मजबूत होने के साथ सेंसरशिप और नियंत्रण कानून बनाए और लागू किए गए। इस आधार पर सबसे पहले जो कार्रवाई की गई वो 1930 में सिनेमा से संबंधित सभी कानूनों को रद्द कर दिया गया था। साथ ही रजा शाह की ओर से ये आदेश दिया गया कि सिनेमा के लिए बनाई गई समिति की अनुमति के बिना किसी को ये अधिकार नहीं होगा कि वो कोई भी फिल्म बनाए और उसे जारी करे।
पहलवी शासन की ओर से आए आदेश में यह भी कहा गया था कि स्क्रिप्ट के आधार पर फिल्म के निर्माण को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा। इसीलिए फिल्म के निर्माताओं को कई खंडों वाले एक आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए बाध्य किया गया था, जिसमें स्क्रिप्ट और इसमें शामिल लोगों और फिल्मांकन के समय और स्थान के बारे में विवरण शामिल थे। आवेदन की समय सीमा 3 महीने थी और यदि इसकी वैधता समाप्त हो जाती है तो फिर नए सिरे से आवेदन देने का प्रावधान था। फिल्म के निर्माण के बाद फिल्म को एक विशेष आयोग की उपस्थिति में दिखाया जाता था, जिसे सीधे तौर पर रजा शाह के आदेश से नियुक्त किया गया था। फिल्म की स्क्रीनिंग का लाइसेंस यह आयोग तभी जारी करता था जब इस आयोग के सभी सदस्य उस पर सहमत होते थे। यदि किसी एक ने विरोध कर दिया तो फिल्म स्क्रीनिंग का लाइसेंस जारी नहीं होता था। कुल मिलाकर फिल्म निर्माण से लेकर उसकी स्क्रीनिंग तक रजा शाह द्वारा गठित किए गए आयोग की सबसे मुख्य भूमिका होती थी। यह आयोग इस बात के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था कि वह चाहे तो आवेदन स्वीकार करे और न चाहे तो बिना किसी कारण के ही उसको स्वीकार न करे।
इन नियमों के आधार पर सेंसर की गई पहली फिल्म 1934 में अब्दुल हुसैन स्पंता द्वारा बनाई गई फिल्म फिरदौसी थी। कहा जाता है कि ये फिल्म सरकारी फंड से बनाई गई थी और रजा शाह ने फिल्म की निजी स्क्रीनिंग में सुल्तान महमूद गजनवी के सामने फिरदौसी की महाकाव्य कहानी पर आपत्ति जताई और कुछ दृश्यों को हटाने और बदलने का आदेश दिया। उन्होंने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि कैसे एक कवि ने सुल्तान गजनवी के सामने घुटने नहीं टेके। फिल्म के निर्माताओं को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी और यहां तक कि उन्होंने सुल्तान महमूद का किरदार निभाने वाले अभिनेता को भी बदल दिया। वहीं ग्रैंड सिनेमा आधुनिक शैली में तेहरान का पहला सिनेमा था जिसे अली वकीली ने 1924 में ग्रैंड होटल में खोला था। 1927 में ईरानी सिनेमा का उद्घाटन के समय कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसने देश की जनता का ध्यान सिनेमा जगत की ओर खींच लिया। इस मुद्दे के कारण सिनेमा के शेयरधारकों ने 1935 में ईरानी सिनेमा का ग्रीष्मकालीन उद्यान खोला जिसे तेहरान में रहने वाले अमीर लोगों और विदेशियों के लिए एक उपयुक्त अड्डा माना जाता था। वास्तव में बागचे सिनेमा ईरान उन सिनेमा उद्यानों में से था जहां मौसम के अनुसार समारोहों का आयोजन होता था और इसे मनोरंजन के लिए एक मुख्य स्थान माना जाने लगा था।
लालेजार स्ट्रीट पर ग्रैंड होटल सिनेमा और हॉल की स्थापना से पहले वहां निजी संगीत समारोह का आयोजन हुआ करता था। इस दौरान होने वाले संगीत समारोह में पारंपरिक गीतों, कविताओं और साहित्यिक शब्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता था और इस कारण उन्हें सेंसरशिप और अधिक दबाव का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे पश्चिमी संगीत कार्यक्रमों और विदेशी समूह ने इन हॉलों में अपना रास्ता बना लिया और समय बीतने के साथ ईरान में संगीत का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में आपको बताया था कि रजा शाह के नेतृत्व में ईरान में एक ऐसे शासन की स्थापना हुई कि जिसने पश्चिम की संस्कृति को अपना रोल मॉडल बनाया और उन्हें ही देश में पूरी तरह लागू करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। रंगमंच उन मनोरंजनों में से एक था जिसका कुछ हद तक सांस्कृतिक पहलू था और लोगों द्वारा इसका स्वागत किया जाता था। दुनिया की नाटकीय कृतियों के अनुवाद के क्षेत्र में संवैधानिक क्रांति से पहले जो आंदोलन शुरू हुआ उसने इसी काल में गति पकड़ी। कई यूरोपीय नाटककारों की कृतियों का फारसी में अनुवाद किया गया जिसमें शेक्सपियर की कृतियां सबसे अधिक थी। इन अनुवादों में नकल और अनुकूलन का मुद्दा जारी रहा और ईरानी दर्शकों के लिए अनुकूलित किया गया।
दोस्तों, ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 20वीं शताब्दी के पहले दो दशकों में सांस्कृतिक क्षेत्र में साहित्यिक और सांस्कृतिक की संख्या में वृद्धि हुई और उनकी गतिविधियों का कुछ हिस्सा थिएटर और नाटकों पर केंद्रित था। इस अवधि के दौरान ईरान की पहली नाटक पत्रिका थिएटर शीर्षक से मिर्जा रजा खान तबाताबाई नाइनी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसी तरह अन्य प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं जैसे कि बहार और राद नामक साहित्यिक पत्रिका में नाटकों और नाटककारों की गुणवत्ता के बारे में लेख प्रकाशित किए जाते थे और कभी कभी थिएटरों की कड़ी आलोचनाएं भी की जाती थीं। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक शो का विनियमन आंतरिक मंत्रालय द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था और सिनेमाघरों, मनोरंजन समारोहों, कैफे, संगीत कार्यक्रमों आदि में सार्वजनिक शो की रूपरेखा को परिभाषित किया गया था।
ये विनियमन नाटकों के प्रदर्शन में सेंसरशिप का परिचय था जो रजा शाह काल के दौरान स्थापित किया गया था और नाटकों की सामग्री को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।
रजा शाह द्वारा की गई इस कार्यवाही का उद्देश्य नाटकों और रंगमंचों को निचले स्तर तक लाना था ताकि इसका प्रभाव भी सिनेमा की तरह उतनी सीमित रहे कि जितना वह चाहते थे। यह कदम ईरान में रंगमंच के लोगों के प्रयासों पर एक सचेत आघात था और इसने उसमें उतार चढ़ाव और दिशा बदल दी। यदि उस समय के कई थिएटर कलाकारों ने दबावों और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया, इस तरह नाटक लेखन ने एक अलग रास्ता अपनाया और ऐसी स्थिति में जब समाज में राजनीतिक घुटन व्याप्त थी, कलाकारों ने अंधेरे माहौल और सेंसरशिप के दबाव से थोड़ा बचने के लिए विदेशी कार्यों के अनुवाद और यहां तक कि व्यंग्य की ओर रुख किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1938 में थॉट कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन के गठन के साथ ही थिएटरों की गतिविधियां बंद कर दी गई और इस बारे में किसी भी तरह की कोई सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की गई।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान शताब्दी के झरोखे में, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के मजार के श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों को अपराधी सहन नहीं कर पाए। राष्ट्रपति ने कहा है कि आतंकवादी घटना ईरानी राष्ट्र की एकता में विघ्न नहीं डाल पाएंगी। अमेरिकी हमले में हशदुर शाबी के दो कमांडर शहीद हो गए। सैयद हसन नसुल्ला ने कहा है कि अल आरूरी की हत्या बिना जवाब के नहीं रहेगी। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आपने शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज पर सुना। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं, पर ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए वेबसाइट का पता नोट कर लें, parstoday.ir/hi। Thank you.